लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, पिछले कुछ समय से आर्थिक और राजनैतिक संकट से जूझ रही श्रीलंका में खाद्य मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और बुनियादी वस्तुओं की किल्लत के कारण 62 लाख से अधिक लोग अपना पेट भरने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बीते कई महीनों के विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग के बाद शनिवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दोनों नेताओं के घरों में घुस आए। वे राष्ट्रपति को देश के आर्थिक दुर्व्यवस्था के लिए दोषी ठहराते हैं, जिसकी वजह से देश में महीनों से खाद्य पदार्थों, ईंधन और दवाओं की कमी हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
विश्व खाद्य कार्यक्रम ने आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका में खाद्य असुरक्षा हालात पर नया विश्लेषण जारी किया है, जो बताता है कि हर 10 में से 3 घर परिवारों के लिए अपने भोजन का प्रबंध कर पाना भी अनिश्चितताओं से घिरा है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से स्वस्थ आहार आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। करीब 60% घर परिवार अपने आहार की मात्रा कम कर रहे हैं और कम पोषक भोजन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यूएन एजेंसी ने आशंका जताई है कि देश में आर्थिक संकट गहराने की स्थिति में अनेक अन्य लोग जीवन व्यापन के लिए ऐसे कदमों का सहारा लेने के लिए मजबूर होंगे। कोविड-19 महामारी की संक्रमण लहरों, पर्यटन सेक्टर पर उसके प्रभावों और फिर राजनीतिक व आर्थिक संकट से देश में दशकों की प्रगति के लिए खतरा उपजा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने पिछले महीने देश में प्रभावितों तक खाद्य व पोषण राहत पहुंचाने के लिए 6 करोड़ डॉलर की एक आपात अपील जारी की, ताकि जोखिम झेल रहे 30 लाख लोगों को सहायता प्रदान की जा सके।
दुनिया के धनी और विकासशील देशों के समूह G20 अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री 7 जुलाई से 2 दिवसीय वार्ता के लिए इंडोनेशिया की बाली में जमा हुए। इस वार्ता का एजेंडा वैश्विक सहयोग और खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने अपने संबोधन में शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व के निर्माण के लिए देशों के बीच रचनात्मक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पक्षवाद और वैश्विक शासन व्यवस्था के लिए बढ़ते खतरों के प्रति आगाह किया।
It's the only way to avoid widespread food shortages, deepening climate chaos, and the wave of poverty and destitution that will leave no country untouched.
महासचिव कह रहे थे, व्यापक स्तर पर व्याप्त खाद्य किल्लत, गहराती जलवायु उथल-पुथल, निर्धनता और निराश्रयता, ये किसी देश को अछूता नहीं छोड़ेंगी। इससे बचने का एकमात्र रास्ता बहुपक्षवाद को मजबूती प्रदान करना है। यूएन महासचिव ने जलवायु संकट से बचने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल का अंत करने की पुकार लगाई है। यूक्रेन में होने वाले खाद्य उत्पादन और रूस में खाद्य व उर्वरक उत्पादन को युद्ध के बावजूद विश्व बाजारों में फिर से वापस लाने पर बल दिया गया है, ताकि खाद्य असुरक्षा संकट से निपटा जा सके। मौजूदा हालात में अंतर्राष्ट्रीय कर्ज प्रदान करने के तंत्र में तत्काल सुधार और विकासशील देशों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाने भी जरूरी होंगे। यूएन प्रमुख ने दुनिया में एक ऐसी बहुपक्षवादी व्यवस्था पर बल दिया है जो कि अधिक कारगर, पहले से अधिक जुड़ी हुई और अधिक समावेशी हो।
संयुक्त राष्ट्र यौन व प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के एक नए शोध के अनुसार विकासशील देशों में महिलाओं की कुल संख्या की लगभग एक तिहाई आबादी 19 वर्ष या उससे भी कम उम्र में बच्चों की मां बनती हैं। यूएन जनसंख्या ने हालात में बेहतरी लाने के इरादे से अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिश भी पेश की है। ज्यादा जानकारी दे रही है शिवानी काला।
विश्व भर में प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है, मगर यूएन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताएं, किशोरवय लड़कियों की मौत व उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचने का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा किशोर अवस्था में ही मां बन जाने की वजह से उनके मानवाधिकारों का हनन होने और गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम होने का जोखिम भी बढ़ सकता है। यूएन जनसंख्या कोष के कार्यकारी निदेशक डॉ नतालिया कानेम के अनुसार विकासशील देशों में कुल महिलाओं की लगभग एक तिहाई आबादी किशोर अवस्था में मां बन रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि पहला बच्चा होने के बाद किशोरवय अवस्था में ही महिलाओं के और बच्चों का जन्म होना आम बात है। यूएन जनसंख्या कोष ने हालात में बेहतरी लाने के इरादे से अपनी रिपोर्ट में नीति निर्धारकों के लिए अनेक अनुशंसाएं भी प्रस्तुत की हैं। इसके तहत लड़कियों के लिए यौन शिक्षा, सामाजिक समर्थन सेवा की व्यवस्था की जानी होगी, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं, परिवारों को आर्थिक समर्थन व स्थानीय स्तर पर संगठनों के साथ संपर्क व संवाद स्थापित करना भी जरूरी होगा।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने गुरुवार को आगाह किया कि यूक्रेन में चार महीने से जारी युद्ध से प्रभावित लाखों लोगों के लिए सर्दी के महीने बेहद कठिनाई भरे साबित हो सकते हैं। यूएन एजेंसी की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में भीषण लड़ाई के बीच रूसी सैन्य बल आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को यूक्रेन के केंद्रीय विनित्सिया इलाके में हुए एक घातक मिसाइल हमले पर हतप्रभ हैं, जिसमें खबरों के अनुसार 22 लोगों की मौत हुई है और 100 से अधिक घायल हुए हैं। मृतकों में 3 बच्चे भी हैं। यूएन के नए अपडेट के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में 60% से अधिक लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। देश के उत्तरी हिस्से के लिए यह आंकड़ा 15%, दक्षिण के लिए 11% और राजधानी कीव के लिए 11% है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने गुरुवार को आगाह किया है कि यूक्रेन में युद्ध से प्रभावित लाखों लोगों के लिए सर्दी के महीने बेहद कठिनाई भरे साबित हो सकते हैं। रूसी सैन्य बलों द्वारा यूक्रेन पर 24 फरवरी को आक्रमण के बाद से अब तक देश में 1,15,00,000 लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। 63,00,000 से अधिक लोग देश की सीमाओं के भीतर ही विस्थापित हैं। यूएन शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिपो ग्रैंडी ने राजधानी कीव के पास इरपिन और बूचा में बमबारी से तबाह हुए इलाकों का दौरा करने के बाद कहा,
एंड विंटर्स इन यूक्रेन आर वेरी हार्श एंड सीवियर, एक्सट्रीमली कोल्ड, सो वी मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रिवेंट द कोल्ड ऑफ विंटर फ्रॉम बिकमिंग द नेक्स्ट चैलेंज फॉर पीपल दैट ऑलरेडी हैव टू फेस सो मच इन देयर लाइव्स।
यूक्रेन में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और बहुत कठिनाई भरी होती है, इसलिए हमें हर संभव प्रयास करने होंगे ताकि पहले से ही अपने जीवन में बहुत कुछ सह रहे लोगों के लिए ठंड को उनकी अगली चुनौती बनने से रोका जा सके। यूएन शरणार्थी एजेंसी ने आगाह किया है कि लोग अपने क्षतिग्रस्त घरों को फिर से खड़ा करने, अपने परिवार से फिर मिलने और 4 महीने से जारी युद्ध के सदमे से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके रोजगार और आय के स्रोत खत्म हो गए हैं, जबकि अति आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, ईंधन और उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत, उसके बाद समाचार।
मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा
मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास मुझे देता है तू
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। इताली दैनिक ला रिपुब्लिका के संस्थापक इटली के विख्यात पत्रकार यूजेनियो स्काल्फरी के निधन की खबर सुनने के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने हार्दिक संवेदना व्यक्त की तथा स्काल्फरी के साथ हुई बातचीत को याद किया। 2013 में संत पापा फ्रांसिस के परमाधीक्षी चुनाव के तुरंत बाद यूजेनियो स्काल्फरी के साथ उनकी बातचीत हुई थी, जिसमें संत पापा ने विश्वास और धर्म निरपेक्षता के बीच विद्यमान संबंधों पर प्रकाश डाला था। स्काल्फरी को सीधे जवाब देते हुए संत पापा फ्रांसिस ने 4 सितंबर 2013 को ला रिपुब्लिका में अखबार के निर्माता को लिखा था, मेरा यकीन माने, कलीसिया के पास अपनी समस्त मंदताओं, बेवफाइयों, त्रुटियों और कमजोरियों के बावजूद जो कुछ है वह है प्रभु येसु मसीह की गवाही। येसु की गवाही देने के सिवाय कलीसिया का और कोई अर्थ अथवा प्रयोजन नहीं है। 98 वर्षीय पत्रकार यूजेनियो स्काल्फरी का निधन गुरुवार को हो गया था। अपने करियर की शुरुआत से ही स्काल्फरी संचार की दुनिया में एक महत्वपूर्ण नायक रहे थे। स्काल्फरी द्वारा निर्देशित इटली का साप्ताहिक एल एस्प्रेसो और विशेष रूप से दैनिक समाचार पत्र ला रिपुब्लिका से वे मीडिया जगत में लोकप्रिय हो चले थे। ला रिपुब्लिका की स्थापना स्काल्फरी ने 1976 में की थी तथा 20 वर्षों तक इसके संपादक भी रहे थे। गुरुवार को जारी एक वक्तव्य में वेटिकन प्रेस कार्यालय के निर्देशक मत्तेओ ब्रूनी ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस ने गहन दुख के साथ अपने मित्र के निधन की खबर को जाना। वक्तव्य में कहा गया, संत पापा फ्रांसिस स्काल्फरी के साथ वर्षों के अंतराल में हुई मानव जाति के अंतिम प्रश्नों पर गूढ़ बातचीत और बैठकों की स्मृति को स्नेह से संजोते हैं और प्रार्थना में दिवंगत आत्मा को प्रभु ईश्वर की करुणा के सिपुर्द करते हैं ताकि प्रभु उन्हें चिर शांति प्रदान करें तथा उनके प्रियजनों और मित्रों को सांत्वना प्रदान करें। इसी बीच इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला ने एक बयान में कहा, वे पत्रकार, संपादक, निबंधकार, राजनीतिज्ञ और हमारे गणतंत्र इतिहास के स्पष्ट और भावुक गवाह यूजेनियो स्काल्फरी के निधन से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि स्काल्फरी पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं और बहुत बड़ी संख्या में पाठकों की पीढ़ियों के लिए हमेशा एक आकर्षक संदर्भ बिंदु बने रहेंगे। वेटिकन ने प्रकाशित किया कि 24 जुलाई को संपूर्ण विश्व में दादा दादी और बुजुर्गों को समर्पित विश्व दिवस 2022 मनाया जाएगा। दादा दादी और बुजुर्गों को समर्पित विश्व दिवस का यह दूसरा संस्करण है जो 24 जुलाई को विश्व के समस्त धर्म प्रांतों, पल्लियों और कलीसियाई समुदायों में मनाया जाएगा। संत पापा फ्रांसिस ने 2021 में बुजुर्गों को समर्पित विश्व दिवस की स्थापना की थी जो प्रतिवर्ष जुलाई माह के चौथे रविवार को माता मरियम के माता पिता संत अन्ना और संत योआकिम के पर्व के समय मनाया जाना निर्धारित किया गया है। संत पापा फ्रांसिस ने दादा दादी और बुजुर्गों को समर्पित विश्व दिवस 2022 का शीर्षक रखा है, वृद्धावस्था में भी वे फलप्रद होंगे। विश्व दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित वैटिकन की विज्ञप्ति में कहा गया कि इस तरह से संत पापा फ्रांसिस कोमलता की क्रांति के शिल्पकार होने के लिए बुजुर्गों को एक अस्तित्व परक परियोजना की पेशकश करना चाहते हैं। 24 जुलाई को वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में रोम धर्म प्रांत के प्रति धर्माध्यक्ष कार्डिनल आंजलो दे दोनातिस ख्रीस्त्याग अर्पित कर बुजुर्गों को समर्पित विश्व दिवस का उद्घाटन करेंगे। विश्व के समस्त धर्म प्रांतों से आग्रह किया गया है कि वे भी अपने अपने धर्म प्रांतों के गिरजाघरों में इस दिन ख्रीस्त्याग से उक्त विश्व दिवस का शुभारंभ करें तथा इस दिन को बुजुर्गों के प्रति समर्पित रखें। इसके अतिरिक्त लोक धर्मियों की प्रेरिताई हेतु गठित परम धर्म पीठीय परिषद का सुझाव है कि सभी कैथोलिक धर्मानुयायी इस दिन बुजुर्गों की भेंट करें तथा उनके एकाकीपन को दूर करते हुए उनके साथ बातचीत करें। विश्व दिवस से पूर्व कार्डिनल दे दोनातिस ने रोम धर्म प्रांत के समस्त पल्लियों को पत्र लिखकर स्मरण दिलाया कि गर्मियों के मौसम में कई गतिविधियां बाधित होती हैं, लेकिन कई बुजुर्ग छुट्टी पर नहीं जाते हैं। वे शहर में हमारे आस पड़ोस में रहते हैं और कभी कभी वे स्वतः को और भी अधिक परित्यक्त महसूस करते हैं, तो अच्छा होगा कि इस दिन के अवसर पर बुजुर्गों के लिए एक सरल और सार्थक क्षण के बारे में सोचा जाए। उन्होंने लिखा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जहां तक संभव हो सके आप घरों में रहने वाले और नर्सिंग होम्स में रह रहे बुजुर्गों की भेंट करें। उन्होंने कहा, प्रेम और प्रेरितिक उदारता के साथ की गई देखभाल के सरल संकेत कई एकाकी लोगों को साहस और प्रकाश देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूक्रेन और रूस के बीच इस्तांबुल में अनाज निर्यात पर वार्ता में हुई प्रगति की सराहना की है। बुधवार को यूक्रेन, रूस और तुर्की के प्रतिनिधिमंडल ने तुर्की के इस्तांबुल शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों से विश्व बाजार में यूक्रेनी अनाज निर्यात करने के तरीकों की तलाश की। मुलाकात के बाद बताया गया कि वार्ताओं में काफी प्रगति हुई है। विगत कुछ एक माहों में यूक्रेन में संघर्ष के कारण वैश्विक खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई है तथा भोजन की कमी के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने वार्ता में हुई मूल प्रगति की सराहना की और इसे काला सागर के माध्यम से यूक्रेनी खाद्य उत्पादों के सुरक्षित निर्यात को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम निरूपित किया। उत्तरी जम्मू कश्मीर राज्य में हुए एक भूस्खलन में 16 व्यक्तियों की मौत तथा कई लोगों के लापता होने के उपरांत भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने अमरनाथ की तीर्थयात्रा पर जाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है। 13 जुलाई को एक वक्तव्य प्रकाशित कर मुंबई के कैथोलिक धर्माधिपति कार्डिनल ऑज़वाल्ड ग्रेशियस ने कहा, भारत के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन को अमरनाथ की तीर्थ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं की जान जाने पर गहरा दुख हुआ है। कार्डिनल महोदय के वक्तव्य में कहा गया, सीबीसीआई जीवन पर हुई हानि के प्रति शोक व्यक्त करता तथा उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता है। कैथोलिक धर्माध्यक्ष घायलों के लिए प्रार्थना करते तथा उम्मीद करते हैं कि वे शीघ्रातिशीघ्र लाभ प्राप्त कर सकें। 8 जुलाई को मंदिर के पास भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, 37 घायल हो गए और 30 से अधिक लापता हो गए, जबकि 15,000 को बचाया जा सका। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।